نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، دار الإيمان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک سالہ ایوننگ کورس کی آج پہلی کلاس ہے. اس پر میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا مالک، معبود اور حاکم ہے، اس نے قرآن کی شکل میں میرے اور آپ کے نام ایک پیغام بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. الرحمن علم القرآن، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن کی نعمت سے نوازا. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت متقین کے لیے ہے. قرآن مجید ایک انقلابی پیغام ہے. اس کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے. یہ امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. یہ قوموں کے عروج و زوال کی کہانی سنا کر امت مسلمہ کو بتاتی ہے کہ امت مسلمہ زوال سے نکل کر ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سورۃ الجاثیہ آیت 20 میں فرماتے ہیں، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے. مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخِرِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ترقی دے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا. میری پیاری بہنوں، قرآن مجید جو ہے، اگر میں اور آپ اس میں غور و فکر کریں تو میرے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. تمام بیماریوں کا علاج اسی کتاب میں موجود ہے. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرأت کردار. سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں چند ایک باتیں بہت اہم ہیں. تذکیر القرآن کی اس ایوننگ کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں قرآن مجید کا پیغام پہنچے، ہر مسلمان اس پیغام کو سمجھے اور سمجھائے، اور ہر مسلمان کی اپنی ذات جو ہے وہ قرآن کا سینٹر بن جائے. نمبر دو، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ کا سبق روز یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محنت مشقت کریں، الفاظ کے معنی یاد کرنا، آیات پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تاکہ اللہ کے کلام کے اندر جو معنی ہیں، جو اسرار ہیں، ان تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے. قرآن مجید جیسے کہ قرآن کر ان سے ہے، قاف را حمزہ پڑھی جانے والی، اور قرآن کے لفظی معنی ہی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، اس میں مبالغہ ہے. जैसे अर्रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, कुरान बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और दुनिया में हकीकत यह है कि कोई किताब ऐसी नहीं जो इतनी कसरत से पढ़ी जाती हो जितनी कसरत से कुरान मजीद पढ़ा जाता है। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं और ये सूरतें अपने नजूल के एतबार से दो किस्मों की हैं, कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी। मक्की सूरतें वो हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड के जमाने में मक्का में नाजिल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत पर फायज होने के बाद 13 साल तक, तकरीबन 13 साल तक आप मक्का में रहे और इस दौरान जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं। मक्की सूरतों में बिलमूम तौहीद, आखरत और रिसालत के मजामीन बयान किए गए हैं। इसकी आयात छोटी छोटी और आयात में एक रदीफ और काफिया पाया जाता है, जबकि जो मदनी सूरतें हैं ये वो सूरतें हैं जो मदनी दौर में नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ चुके थे और ये तकरीबन मदीना में 10 साल के अरसे में नाजिल हुई। मदनी सूरतों में जो है वो मईशत, मुआशरत, सियासत, घरेलू जिंदगी और घर के कमरे से लेकर और हकूमत के तख्त तक के तमाम अहकाम जो हैं वो बयान किए गए हैं। मदनी सूरतें जो है इसकी आयात निस्बतन मक्की सूरतों के तवील हैं। तो नजूल के एतबार से सूरतें दो किस्म की हैं। फिर आप देखिए कि जब आप सबक जो है वो पढ़ेंगी तो सबक जो है सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा, फिर उसके बाद जो है उसकी तफसीर। और तफसीर जो है इसके मानी क्या है, फासीन रा से ये लफ्ज निकला है और इसके मानी है ढकी हुई चीज को खोल देना, वजाहत करना, किसी चीज की मानवी सिफत बयान करना। जैसे ख्वाब की ताबीर के लिए अरबी जबान में तफसीरु रोया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ख्वाब की ताबीर। या जैसे ख्वाब में आप देखें कि जब ख्वाब देखते हैं तो बहुत सी चीजें जो है वो वाजे नहीं होती और फिर जब उसकी ताबीर सामने आती है, उसकी वजाहत की जाती है, तो फिर पता चलता है कि असल में ख्वाब जो था वो क्या था। आप जब कुरान मजीद का मताला करेंगी तो आप देखेंगी कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपको उसके मानी आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको मुश्किल भी लगेंगे। और वैसे कुरान के कुल अल्फाज तकरीबन 80,000 बनते हैं और असल अल्फाज जो हैं ये कहते हैं कि 2,000 हैं और बार बार आने की वजह से, तकरार की वजह से ही 80,000 हो जाते हैं। और 2,000 में से भी 500 अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में बोले और समझे जाते हैं। जैसे आप देख लें जन्नत का लफ्ज है या फिर अल्लाह है और फिर शऊर है, बशर है, जहन्नुम है, नार आग है, शैतान है, जिन है। तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आप उर्दू में भी इस्तेमाल करती हैं और ये आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं है। फिर आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं मुश्किल अल्फाज को तोड़कर बयान करूंगी, उनको जब उसमें तोड़ फोड़ होगी तो मैं कहूंगी मादा, रूट। मादा और रूट क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि रूट या मादा जो है ये असल है। जैसे आप देखें कि एक दरख्त है तो दरख्त की रूट्स है और फिर रूट से जो है वो दरख्त के का तना और फिर उसकी बहुत सी शाखें, फिर उसके पत्ते, बहुत सी चीजें जो है बनती हैं। इसी तरह जो है वो जब आप कुरान को पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि एक ही लफ्ज से जो है वो कुरान मजीद में मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, अरबी जबान में मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। और अगर आपको किसी लफ्ज का रूट पता चल जाता है, जिसे रूट को अरबी जबान में मादा भी कहते हैं, मादा पता चल जाता है तो फिर आपके लिए जो है वो रटने की बजाय जो है वो समझ कर याद करना आसान हो जाएगा। जैसे आप, इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे आप पढ़ती हैं कि मैं लिखी यौमिद्दीन, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो मैं लिख, मैलिक लफ्ज जो है ये मीम लाम काफ इसका रूट है, और इससे देखे बहुत से अल्फाज बनते हैं। मालिक तो ऑनर को कहते हैं, जैसे मालिक। इसके अलावा जो है वो आप देखे ममलिकत, हकूमत के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर मिल्क, तो जैसे जिसकी जो चीज जिसके कब्जे में हो तो उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो बोला जाता है। और इसी तरह इया का नाबुदू, नाबुदू का लफ्ज जो है अगर इसका रूट पता चल जाए तो ऐन बादाल अब्द जो है ये रूट है। इसी से इबादत, माबूद, अबूदियत, तो मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो बनते हैं। तो रूट और मादा बताने का मकसद ये है, इसको समझने का और याद करने का मकसद ये है कि आप जो है अगर इसी फैमिली का कोई लफ्ज जो है इसी रूट से लफ्ज कुरान में आया है तो आप इसको जो है वो समझ सकें। जैसे आप देखें कुरान ही है तो काफ रा हमजा कर उन से है और पढ़ना, और इसी तरह कुरान पढ़ी जाने वाली किताब। इसी तरह करात, करात का लफ्ज कारी, तो इन सबका रूट जो है वो एक ही है। तो जब हम जो है इंशाल्लाह कुरान को पढ़ेंगे तो हम जो है इसका मादा और इसका रूट जो है वो भी साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। अब आप देखें कि मादा जो है ये बाज अल्फाज ऐसे हैं जो कि एक हरफी हैं, यक हरफी, जैसे आ, जैसे अरई तल्लजी युकज्जिबु बिद्दीन, आ, तो ये एक हरफी है। इसी तरह अलम तरो कैफा, आ, इसमें भी ये एक एक हरफ है, इसका कोई रूट नहीं है। इसी तरह जो दो हरफी हैं इनका भी रूट नहीं है, जैसे अन, इन, लम, फी, तो इनका भी कोई रूट नहीं है, इनका मादे से या रूट से कोई ताल्लुक नहीं। हर मादे या रूट का तीन हरूफ पर मुश्तमिल होना जरूरी है, हर मादा तीन हरूफ पर मुश्तमिल होना जरूरी है। और ऐसा भी आप देखेंगे कि बाज हरूफ ऐसे हैं, बाज अल्फाज ऐसे हैं कि जिन जिनका मादा जो है वो चार हरफी है, छह हरफी या फिर रुबाई चार हरफी हो सकता है। मादा और रूट के अलावा मैं एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगी, जैसे मुतरादिफ। मुतरादिफ ये लफ्ज जो है रा दाल फा से निकला है, रदिफा, इसका मतलब होता है सवार होना, और इसके मानी है जैसे हम मानी, मिलते जुलते, जैसे करीबुल मानी अल्फाज। और ऐसे अल्फाज इनमें बहुत लतीफ फर्क पाया जाता है, बहुत ही बारीक सा फर्क जो है वो पाया जाता है। और ये अल्फाज जो है अगर आप गौर करेंगी आप देखेंगी कि बिल्कुल ही मिलते जुलते अल्फाज हैं, और फर्क एक आम नजर से देखें या सोचें तो फर्क इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप जरा सा गौर करेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें जो है वो खास तौर पर जो है वो फर्क पाया जाता है। मसलन आप देखिए कि लफ्ज इस्तेमाल होता है जो है वो, जैसे माँ, बारिश, तो माँ पानी को भी कहते हैं और ये बारिश के लिए भी आता है। इसी तरह जो है वो एक और लफ्ज है जो इस्तेमाल होता है, आप कह लें मुज्न, मीम ज़े नून, ये भी बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे रहमत का बादल या रहमत की जो बारिश है उसके लिए मुजना, बाज लोग मुजना नाम भी रखते हैं। इसी तरह जो है वो एक और लफ्ज है कुरान में बारिश के लिए है, मिदरारा। मिदरारा जो है असल में जैसे गाय का जब दूध धोया जाता है तो जो धार उसकी गाय के दूध की या भैंस के दूध की जो धार है उसके लिए आता है मिदरारा, तो वो बारिश जो मूसलाधार होती है उसके लिए मिदरारा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कहने को मतर, माँ, मिदरारा, ये सारे लफ्ज हैं जो कि बारिश के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मानी में थोड़ा सा बारीक सा जो है वो फर्क है। इसी तरह आप ये भी कर सकती हैं, जैसे आप देखें खौफ, खौफ जो है ये लफ्ज डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस चीज का खौफ? फ्यूचर का, मुस्तकबिल का खौफ। और इसी तरह एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जैसे हुज्न, हा ज़े नून, और ये भी एक खौफ और गम की कैफियत होती है। तो ये किस चीज का खौफ होता है? जो वक्त गुजर गया, माजी का। इसी तरह जैसे तकवा का लफ्ज है, ये भी खौफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तकवा इख्तियार कीजिए, डरिए। तो तकवा, ये डर किस चीज का है? इसके मानिए कि इंसान जो है जो अपनी गलतियां या गुनाह करता है तो उनसे डरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरे। तो तकवा के मानी फिर क्या है कि इंसान जो है वो गुनाहों से और अल्लाह की पकड़ से डरे, जहन्नुम से डरे और फिर जन्नत की तैयारी करे। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज जो है आप पढ़ेंगी जो कि कुरान में मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो है उनमें एक बारीक सा फर्क पाया जाएगा। इसी तरह मैं एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगी तफसीर को करते हुए, जैसे जविल अजदाद, अजदाद जिद से है, ओपोजिट ओपोजिट के मानी है। और बाज लफ्ज ऐसे हैं जो ओपोजिट मानी रखते हैं, जैसे जो है वो आप ये पढ़ेंगी कि मुनाफिक लफ्ज, जैसे आप पढ़ेंगी तो मुनाफिक जो है नून फा काफ इसका रूट है और इसके मानी होते हैं कि ईमान वाला भी होना और ईमान से निकलने वाला भी, क्योंकि मुनाफिक डबल फेस रखता है। तो नफा का एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना, कि सुबह के वक्त ईमान लाए तो शाम को इनकार कर दिया, या ये कि जो है वो कभी जो है वो अमल करने वाले बन गए और कभी जो है वो बदअमली करने वाले बन गए। तो मुनाफिक असल में अरबी जबान में नफा का लफ्ज जो है ये टनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टनल के मानी सुरंग के हैं कि एक रास्ते से कोई आ रहा है और दूसरे रास्ते से कोई जा रहा है। तो जब मैं ये बोलूंगी कि ये लफ्ज जो है ये जवील अजदाद है, तो इसके मानी है कि जो है ये लफ्ज बयक वक्त दो मानी रखता है और दोनों मानी ओपोजिट मानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुनाफिक की मिसाल, इसी तरह इनफाक खर्च करना भी होता है कि एक हाथ से पैसे आते हैं दूसरे हाथ से आप पैसे अल्लाह के रास्ते में देते हैं। इसी तरह कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि बै बा या आयन, इसके मानी खरीद के भी हैं और फरोख्त के भी हैं, बयक वक्त दो मानी ये लफ्ज जो है वो रखता है। अच्छा, एक मैं और टर्म इस्तेमाल करूंगी, वो है इस्म जिन्स। इस्म जिन्स के मानी है कि देखने में और कहने में आपको लग रहा है कि एक लफ्ज है, लेकिन वो वाहिद जमा मुजक्कर मोनस हर तरह इस्तेमाल होता है। मैं आपको दो मिसालें दूंगी इस वक्त, जैसे नेमत, नून आयन नीम ता नेमत, और ये लफ्ज वाहिद जमा मुजक्कर मोनस हर तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बकर, बा काफरा बकर जो है ये इस्म जिन्स है, इसके मानी जो है बैल भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, वाहिद भी और जमा भी। तो आयत पूरी को जब देखेंगे फिर पता चलेगा। तो बहरहाल तफसीर को बयान करते हुए मैं मादा, रूट, मुतरादिफ और ओपोजिट मानी जो रखने वाले अल्फाज हैं या इस्म जिन्स, और तफसीर बयान करते हुए इंशाल्लाह कुरानी आयात से हवाले, अहदीस, सहाबा सहाबियात के वाकयात और आम जिंदगी से मिसालें जो है इंशाल्लाह हम देंगे। और ये बात भी याद रखने वाली है कि कुरान मजीद का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। कुरान का टॉपिक इंसान है। आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जलील रब्बे रहीम ने मुझ और आप जैसे इंसान पर किताब लिखी, तो कुरान का टॉपिक और उन्वान मौजू जो है वो इंसान है। कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है, इसका मुद्दा क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मरकजी मजमून। इंसान ने अपनी ख्वाहिशात की पूजा करने की वजह से और शैतान के बहकावे में आने से जो है वो जब सिराते मुस्तकीम को भुला बैठा और अपनी गफलत से उसने सिराते मुस्तकीम को गुम कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इंसान को सही रवैये की तरफ दावत दी। वो अल्लाह जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ने कुरान में हदायत को, सिराते मुस्तकीम को वाजे किया ताकि इंसान जो है जो भूल चुका है वो दोबारा हदायत की तरफ आ सके। जब आप कुरान पढ़ेंगी आप देखेंगी कि इसमें कौमों के उरूजो जवाल के वाकयात भी हैं, और उसके बाद जो है वो अल्लाह की नेमतों की बारिश भी, अल्लाह की पकड़ भी, सजा भी और कुछ कौमों पर अजाब के वाकयात भी पढ़ेंगी। ऐसे में ये देखना होगा कि जब कौमों के वाकयात आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको कहानी समझकर आप गुजर जाएं, बल्कि ये सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। जैसे सूरत अल बकरा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो बनी इसराइल के वाकयात बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। तो फिर उस वक्त जो है वो ये देखना होगा कि अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को बहुत सी नेमतें दी और बनी इसराइल ने उन नेमतों को ठुकराया, ना शुक्री की, नमक हरामी की, तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे उसको सजा दी। تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیے یا قوم عاد نے، ثمود نے، یا قوم فرعون نے، یا قوم لوط نے کیے، کیونکہ پھر جو ہے نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عبرت ناک جو ہے وہ ان کو عذاب دیا، ان کو سزا دی. تو ہمیں ان سارے کاموں سے جو ہے وہ بچنا ہوگا. تو قوموں کے واقعات جو ہے وہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، یہ تو قصہ کہانیاں ہیں اور اب میں اس میں کیا کروں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان ریزیمبلنس اب ہم میں تو نہیں پائی جاتی آج کے دور کے مسلمان میں، مجھ میں، میرے گھر میں، میرے بچوں میں، میرے شوہر میں، میرے رشتہ داروں میں، اور میں کیسے ان چیزوں سے نکلوں، کیونکہ ان کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آ گیا. پھر اس کے ساتھ ہی جب متقی اور مومنین کا ذکر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کا ذکر کریں گے، انبیاء کا ذکر کریں گے، تو ان اوصاف کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ انبیاء کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگا، اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارنا ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ کہ مجھے کرنا کیا ہے، اپنے لیے عمل کے لیے اصول لینے ہیں. آپ جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے کہ اپنی کاپی میں دو آپ جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ لکھ لیں، ایک یہ کہ پسندیدہ صفات قرآن کا مطلوبہ انسان، اور دوسرا یہ کہ ناپسندیدہ صفات، اور وہ بری صفات جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے. تو پسندیدہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو بری صفات ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کے لیے اصول لیا جائے. آپ ہر روز جب سبق پڑھیں گی تو ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے یہ نوٹ کرتی جائیں کہ اس چیز پر مجھے عمل کرنا ہے، یہ چیز مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جو ہے مجھے اپنے لیے عمل کے لیے یہ اصول لینا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے اپنے عمل کے لیے اصول لینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے پھر ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. یہ کتاب جو ہے یہ علم کا منبع ہے، یہ ہدایت کا یہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم کا منبع ہے، اور اس کی گہرائی میں جو جتنا زیادہ اترے گا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی سمندر کی گہرائی میں اترے تو ہیرے جوہرات اور ڈائمنڈ سے اور موتیوں سے جو ہے وہ اپنے دامن کو بھر لے. تو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر کو یاد کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ورنہ کلاس میں داخلہ لینے کا پھر کوئی مقصد نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے مالک اور خالق کو راضی بھی نہیں کر سکتے. اور آج جو امت مسلمہ کے حالات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہیں، اور امت مسلمہ ذلیل اور خوار ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کا دل اداس ہوتا ہے، ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے، پہروں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ کیسے امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار مل جائے، کیسے امت مسلمہ جو ہے وہ اوج ثریا پر اور آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ ہم جو ہے قرآن مجید سے خیر و برکت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دیوی رہنمائی کے سنگ سنگ جو ہے ہم اپنی زندگی کے سفر کو طے کریں. اس سے علم و دانش کے جو اس کے اندر بہت بڑے خزانے ہیں، بیش قیمت خزانے، ان سے اپنے دامن کو بھریں. قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت میں جو روشنی کی شعائیں ہیں، اس کی ہر آیت پہاڑی کے چراغ ہیں، اس کی ہر آیت جو ہے یہ سورج کی طرح جگمگ جگمگ کرتی ہے. اس سے اپنی روح کے اندھیروں کو، اپنے دل اور دماغ کے اندھیروں کو، اپنے گھروں کے اندھیروں کو، اپنے خاندان اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندھیروں کو جو ہیں وہ دور کریں، اور زندگی کے اجتماعی دائروں کو جگمگائیں. انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج کریں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. دنیا میں انسان کپڑوں سے اپنی الماری کو سجاتا ہے، اور زیورات سے جو ہے وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کو، یا عطریات سے، پرفیوم سے. بعض لوگ جو ہیں وہ بہت سے پھول لگاتے ہیں، ان کو گارڈننگ اچھی لگتی ہے. بعض ٹکٹ جمع کرتے ہیں، بعض کو سیل فون اچھے سے اچھا لینے کا شوق ہے، یا پھر یہ کہ لیپ ٹاپ، یا بعض لوگ جو ہیں وہ اچھے اچھے جو ہے وہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں، یا اچھی اچھی گاڑیاں بعض لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. तो हर शख्स जो कुछ जमा करता है उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ये है कि हम कुरान मजीद जो है उसकी आयात से अपने सीने को मुनव्वर करें, इसको सुने सुनाएं, समझे समझाएं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेस्ट वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान समझता है और जो है वो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो आइए पहले दिन इब्तदा में हम ये नियत कर लें कि अल्लाह इस पूरे 1 साल के कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद तेरी रजा हासिल करना है, तुझे खुश करना है और जन्नत को हासिल करना है। और अल्लाह हमारे अमाल में और हमारे तकवा में जो कमी है आप उसको दूर कर दीजिए। और आइए हम इस मौके पर ये दुआ भी करें कि अल्लाह तू हमें जो है वो कुरान मजीद की जो नेमत है, कुरान मजीद की जो दौलत है, इसके जो खजाने हैं, ट्रेयर्स ऑफ दी होली कुरान जो है, वो सारे खजाने और वो सारी दौलत से हम सबको माला माल कर दे। तो इसके साथ जो है हम आज के पहले सबक की इंशाल्लाह इब्तिदा करते हैं।